मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 31 जनवरी 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने युवा साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं संजय गायकवाड़, आप भुआ बिछिया मध्य प्रदेश से हैं, और लवली कुशवाहा आप दिल्ली से हैं। तो संजय और लवली आप दोनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में के रूप में मैं आपसे थोड़े से एक नए विषय पर बात करना चाहूंगा जिसके बारे में शायद आपने अभी तक बहुत ज्यादा पढ़ा न हो, सुना भी न हो, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है और वह है नागालैंड शांति समझौता 2015। इस पर मैं कुछ बातें आपसे करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। मित्रों कल अगर आपने डीडी न्यूज देखा हो तो कल की डीडी न्यूज की जो एक अलग तरह की विशेषता थी सिविल सर्विस के हिसाब से वो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए अभी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है और इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट को बेस बनाकर और उसमें जो डिस्कशन आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो बजट आने वाला है उस बजट में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए शुरू से ही रहा है कि बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है, तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि अभी तक क्या अचीवमेंट रहे हैं अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, हालांकि वो मूल रूप से होता है, और दूसरा है कि आगे हम क्या सोच रहे हैं, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की होगी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी लगभग इसी तरह की बातें होती हैं। तो स्वाभाविक है कि चूंकि वो सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया डॉक्यूमेंट है तो उसको आधार बनाकर बजट के बारे में लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं और करते भी हैं। कल वही बातें टीवी पर डिस्कशन में हो रही थी। मैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर आप वैसे उस रूप में सोचेंगे तो बट नेचुरल है कि भैया क्या उसको सुनना, दो दिन के बाद में तो बजट आ ही जाएगा तो पता ही लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, इसको सुनने से क्या फायदा, क्योंकि वहां तो अनुमान ही है, सब कुछ अनुमानों पर आधारित है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, देखिए यही आपको समझना होगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने की यही एक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक है। बजट में चीजें आ जाएंगी, आप पढ़ लेंगे रट लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने वो डिस्कशन सुना है तो वह आपको रीजन बताएगा। आप देखिए कि जितने भी वहां एक्सपर्ट थे वो जब कहते थे कि मान लीजिए कि ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इसको कम किया जाना चाहिए तो क्यों, और बढ़ाया जाना चाहिए तो क्यों, और ज्यों का त्यों छोड़ देना चाहिए तो क्यों, तो वो जो भी अपनी बात कहते थे, जो भी अनुमान लगाते थे, उसके पीछे वो कारण देते थे। और ये कारण ही सच पूछिए, कारणों को जानना, कारणों को पकड़ना और अपनी तरफ से कारणों की तलाश करना, यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है। वहां सीधे सीधे तरीके से बात कह देने से बात नहीं बनती है, आपको रीजन बताना पड़ता है। मुझे लगता है कि कल का वह जो डिस्कशन था वह इतना रीजन बता बता करके अपनी बात को रखने का एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण था कि उसके माध्यम से आप काफी कुछ इकोनॉमिक्स की समझ भी विकसित कर सकते हैं। जब मैं इकोनॉमिक्स की समझ विकसित करने की बात कह रहा हूं तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, इकोनॉमी की समझ कह लीजिए, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक्स के सूत्र नहीं थे, फार्मूले नहीं थे, नियम नहीं थे, है ना। उसमें भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके परिदृश्य के संदर्भ में बात कही जा रही थी कि नहीं अब देखिए ये हो गया तो यहां ये होना चाहिए, ये हो गया तो ये होना चाहिए। तो मित्रों खासकर जो मैं आपको डीडी न्यूज के लिए सजेस्ट करता रहता हूं वो ठीक है कि आप न्यूज सुनेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह भी है इक्वली कि आप उसे सुनते कैसे हैं, उस पर भी आपका बकायदे ध्यान होना चाहिए। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप पाएंगे कि दो तीन तरह की क्लिपिंग्स सबसे ज्यादा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। एक तो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट को बेस बनाकर के कुछ बातें कही गई हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कृषि को लेकर के कुछ आर्टिकल्स आए हैं, क्योंकि कृषि भारत के लिए बहुत ही एक चुनौतियों से भरा क्षेत्र हो गया है, और अगर भारत कृषि के मामले में अपने आप को बहुत तेजी से विकसित नहीं करेगा तो डेफिनेटली हमारी जो इनइक्वालिटी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, देख रहे हैं आपकी 2017 में हुआ है कि जो टोटल जो पूंजी का निर्माण हुआ है, जो हमारी कैपिटल, जो हमारी जो ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जो धन आया है, उसका 72% केवल 1% लोगों के पास चला गया। ऐसे में क्या होगा? तो कृषि क्षेत्र पर बहुत ज्यादा काम किए जाने की जरूरत है, और मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। तो प्लीज आप सब कृषि क्षेत्र को अच्छे से तैयार करें, और मैं आपको बता भी चुका हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से भी जो चीजें क्लियर हो रही हैं, सरकार की नीति है कि शिक्षा, रोजगार और कृषि पर सबसे ज्यादा वो इस बार ध्यान देगी, तो आपको इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है दैनिक भास्कर का, और बड़ा प्यारा कमेंट है, और उस कमेंट में बताया गया है लड़कियों के जन्म को लेकर के, जिस तरह से हमारे यहां कन्या भ्रूण हत्या होती है उसको लेकर के, और वो हमारी जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है उसी का एक वाक्य है, उसको आधार बनाकर के उन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्योंकि मैं देखिए आपको ऑलरेडी दैनिक भास्कर की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और वो हिंदी में है, इसीलिए उसके विश्लेषण पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये जरूर बता दूं कि इसमें एक दो रेफरेंसेज हैं, वो रेफरेंसेज आपको नोट कर लेने चाहिए और रट लेने चाहिए। मैं रटना शब्द उपयोग कर रहा हूं दोस्तों। अर्थशास्त्री सीमा जयचंद्रन का नाम, इसके बाद जैव वैज्ञानिक क्या कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो अमर्त्य सेन जी रहे, तो दो तीन नाम और रेफरेंसेज आए हुए हैं, उन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ डेटा भी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट एक दो डेटा हूं, ज्यादा नहीं, एक दो डेटा हूं, वो भी आपको नोट कर लेना चाहिए। मित्रों, और न्यूज में कोई खास बात नहीं थी। अब मैं आता हूं आज के अपने मुख्य विषय पर, और आज का जो मुख्य विषय है मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि नागालैंड शांति समझौता 2015। अब मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। न्यूज आपने कल सुनी है और उसमें आपने देखा है कि न्यूज के बारे में बात हुई, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इन सबके जो स्टेट की में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि नागालैंड के लोगों ने, नागालैंड की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी नागालैंड में, उन नागालैंड की पार्टियों ने इलेक्शन का बायकॉट करने का फैसला किया कि हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे ही नहीं। टोटल 11 पार्टी उस तरह से हैं जो चुनावी जो पार्टियां हैं नागालैंड की, और बड़ी बात यह है कि उसमें वह भी पार्टी थी जो नागा पीपुल्स फ्रंट कहलाती है, जो रूलिंग पार्टी है नागा पीपुल्स फ्रंट, वहां उसकी अभी सरकार है, और ये जो सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से बायकॉट करने की स्थिति में। हालांकि फिर बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन कैंडिडेट को, जो भी इसमें शामिल थे, उनको अपना हटा दिया, क्योंकि उनको मतलब सपोर्ट नहीं किया उनके इस कदम को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, और विधानसभा चुनाव का बायकॉट करना एक तरह से काफी कुछ असंवैधानिक भी है, मतलब आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अस्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया? फिर बाद में आपने न्यूज में सुना कि वहां के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने फिर पार्टी के साथ बैठक की, और बैठक करने के बाद हल हो गया, और ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि चुनाव समय पर होंगे और अपने हिसाब से ही होते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत ही वेलकम मूव है कि कम से कम पार्टीज के साथ जो उनकी बातचीत हुई होगी उसमें संभावना बनी कि चुनाव कराए जाएंगे। मित्रों, अब इसी की मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड पर आ रहा हूं कि इनफैक्ट वहां की जो पार्टी है वो इस तरह का कदम क्यों उठा रही थी, और इन्हीं के केंद्र में है पीस एकॉर्ड, जिसका सही नाम है द फ्रेमवर्क नागा एकॉर्ड इन 2015। फ्रेमवर्क नागा एकॉर्ड 2015, जिसे सामान्य तरीके से नागा पीस एकॉर्ड भी कहा जाता है, राइट? दोस्तों, इसके बारे में हम समझें इससे पहले मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस नागालैंड को देखना चाहिए कि नक्शे में ये कहां पर है, कैसे है, ये देखना चाहिए। मैं देखिए पढ़ने का तरीका भी आपको साथ साथ बताने जा रहा हूं, समझने का तरीका भी बताने जा रहा हूं, अदरवाइज तो मैं सीधे सीधे अपनी बात कह देता। आप देखिए कि नागालैंड हमारे बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बॉर्डर पर है, एकदम बॉर्डर पर नागालैंड। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू हो जाती है। ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए राज्य होंगे डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील राज्य होते हैं, है ना। तो नागालैंड आपको वहां मिलेगा, नागालैंड, मणि, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, वो आपको पूरी की पूरी एक लाइन मिलेगी। लेकिन यहां आपको देखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नागालैंड की ये जो 11 पार्टीज है, जो एकॉर्ड हुआ था जो 2015 में, ये जो नागालैंड की जो मांग है, जो ये पार्टी है उनकी मांग को बहुत मैं सरल शब्दों में आपके सामने रख रहा हूं, वो ये है कि जो तीन राज्य हैं, वो तीन राज्य कौन कौन से आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, डबल ए एम याद रखने के लिए। ये जो तीन राज्य हैं इनमें जो कुछ राज्य, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, जिले ऐसे हैं जहां नागा लोग रहते हैं, नागा लोग रहते हैं। तो इनका यह कहना है कि वो जो नागा लोग रह रहे हैं, पहले इनका कहना था तो उन जिलों को इन तीनों राज्यों से निकाल करके और नागालैंड में शामिल कर दिया जाए, ये इनका, इनकी मांग थी कि जहां नागा लोग रह रहे हैं उन जिलों को नागालैंड में शामिल कर दिया जाए। इसका मतलब है कि आपको अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के जिलों को वहां से निकाल करके नागालैंड को देना पड़ेगा। तो ये ग्रेटर नागालिम की मांग कर रहे हैं, ग्रेटर नागालिम, ये इनकी मांग थी। इसके लिए आंदोलन चलते रहे और दुनिया भर की चीजें होती रही। 2000 आप देखेंगे 13-14 में आंदोलन भी होते रहे, फिर वो इंसर्जेंसी जैसी स्थिति होने लगती है। तो अंततः जाकर के 2015 में एक समझौता हुआ, ये इसी समझौते की मैं बात कर रहा हूं, उस समझौते के मैं पॉइंट पे नहीं जाता मित्रों। 3 अगस्त 2015 को सिग्नेचर हुए, और जो सिग्नेचर हुआ वो किसके साथ हुआ, देखिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम आइसक म्यूरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट भी इस पर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आप देखेंगे। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम डैश करके आइसक म्यूवा, ये उनके लीडर्स के नाम है, ये ग्रुप है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ग्रुप है ये सिविल सोसाइटीज का ग्रुप है, वहां की जो सिविल सोसाइटीज है उनको लेकर के बना हुआ ये ग्रुप है। इसके साथ सिग्नेचर हुआ एकॉर्ड में। अब देखिए कि सिग्नेचर में क्या बात कही गई, हम उस महत्वपूर्ण बात को ले लें। उसमें यह कहा गया कि क्योंकि आप अरुणाचल प्रदेश और असम और इनसे मांगेंगे कि भैया आप दे दीजिए हमें अपने ये जिले, तो वो देने को तैयार नहीं होंगे, उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट भी कर दिया। तो उसमें समझौता यह हुआ कि ठीक है, चलिए ये जो जिले हैं जो दूसरे राज्यों में स्थित हैं, इन जिलों में हम एक काम करते हैं कि स्वायत्त जिला परिषद बना देते हैं, मतलब ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब है कि उनको काफी कुछ अधिकार मिल जाएंगे, फिर वो अपनी व्यवस्था खुद करते रहेंगे, तो इससे ये समस्या, इस समस्या का हल हो जाएगा। 2015 में ये समझौता हुआ, लेकिन इस पर काम नहीं हो पाया। बस इसी के विरोध में वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो विधानसभाओं के चुनाव का बायकॉट करने के लिए, अब कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे तो बायकॉट करने जैसा ही है, निर्णय उन्होंने लिया था। मित्रों ये थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने आपको बताई है, बहुत क्लियरली सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, मेरी समस्या आपके समझ में आ गया होगा। अब जो मैं नक्शे की बात कर रहा था, मित्रों आप नागालैंड के नक्शे को देखिए, नागालैंड को देखिए भारत के नक्शे में, तो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल किनारे है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और फिर असम है और इसके नीचे आपको मिल जाएगा मणिपुर। ये तीनों राज्यों की जो सीमा है वो नागालैंड से मिलती है। तो एक जनरल स्टडीज की दृष्टि से, प्री के लिहाज से आपके पास फिर एक नॉलेज का टुकड़ा आ गया कि नागालैंड राज्य की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, बहुत क्लियर ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों यहां मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूंगा, और वो ये कि हमारा जो संविधान है, आप देखेंगे कि संविधान में जो हमारे बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं जहां अनुसूचित जाति जनजातियों की संख्या बहुत है, उन राज्यों के लिए विशेष अनुबंध किए गए हैं, विशेष अनुच्छेद हैं उनके लिए, और ये अनुच्छेद हैं संविधान के भाग 21 में ये रेफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस के मेंस में पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 21 का अनुच्छेद है 371 से 371 झ च छ ज झ, कई उसमें पॉइंट हैं। और इसमें मैं स्पेशली आपको बताना चाहूंगा कि जो अनुच्छेद 371 क है, 371 क या आपको याद होना चाहिए, उसका संबंध नागालैंड से है। और नागालैंड के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, देखिए जो पहला प्रावधान है जो इससे रिलेटेड है, यो है कि संसद जो भी कानून बनाएगा वो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वहां विधानसभा अनुमोदन न कर दे। लेकिन वो कौन से कानून, यानी कि कोई भी कानून, कुछ कानून के बारे में प्रोविजन है, जैसे कि ऐसे कानून जिनका संबंध वहां के जो रहने वाले लोग हैं नागाओ, जिन्हें हम कहते हैं नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं से हो, जिसका संबंध उनकी अपनी जो रूढ़ी से परंपरा से चले आ रहे जो कानून है और जो प्रक्रियाएं हैं उनसे हो, या फिर वो अपने ही कुछ उनके अपने न्याय प्रशासन होते हैं, वो अपने परंपराओं के हिसाब से कुछ फैसले करते हैं उनसे संबंध हो, या फिर जो उनकी जमीन है और जो संपत्ति है उनका मालिकाना हक और किस तरीके से मालिकाना हक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है उनसे हो। अगर इनसे कोई संबंधित कोई कानून होगा तो जरूरी है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को विधानसभा अनुमोदित करे, तभी वह लागू होगा, ताकि उनकी अपनी जो परंपराएं हैं वो बनी रहे, उस पर हस्तक्षेप न हो। तो देखिए एक विशेष अनुबंध नागालैंड के लिए किया गया है, है ना, उसी के तहत आप कह लीजिए कि स्वायत्त जिला परिषद की स्वीकृति सरकार ने दी होगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको जो बहुत बेसिक इसके पॉइंट्स थे वो मैंने बताए हैं। और इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह के इश्यूज आते हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से उस टॉपिक पर विशेष मेहनत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले मैं दो मित्रों, आप सब की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा अपने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट सेजुल कुमार को, जो राजकोट से हैं, गुजरात से हैं, और ये काफी ईमेल शुरू से ही लिखते रहे हैं। हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेन्स एक एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई किया है। तो सेजुल, हम सबकी बहुत बहुत आपकी सफलता के लिए बधाई और भविष्य के आगे की सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो मित्रों, सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप में से ही कुछ मित्रों के नाम हैं, शशांक निगम जो कांच उत्तर प्रदेश से हैं, प्रियंका शर्मा आप असिवनी मध्य प्रदेश से हैं, बीएस यादव इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, निशालेन जिवार भंडारा महाराष्ट्र से हैं, दीपराज सिंह चौहान सूरज राजपूत, विपिन बिहारी पटेल धनबाद से और दीक्षा त्रिपाठी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।